ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम आठवें स्कंध अध्याय 9 श्लोक संख्या 12 मेरे वचन में। ततो गृहीत्वा मृतभाजनं हरिः बभासि सतिस्मित शोभया गिरा यद्यभ्युपेतं क्वच साधु साधुवा कृतं मया वो विभजे सुधामिनां। शब्दात बोलिए तथा तत्पश्चात गृहीत्वा लेकर अमृत भाजनम अमृत पात्र को हरि ही मोहिनी के रूप में हरि ने बभास कहा सत कुछ कुछ स्मृत शोभया गिरा हस्ती हुई मुद्रा से तथा शब्दों से यदि यदि अभ्युपेतम स्वीकार करने का वचन क्वाचा जो भी हो साधु असाधु वा अच्छा या बुरा कृतम मया मेरे द्वारा किया गया वह तुम्हारे लिए विभजे तुम्हें समुचित भाग प्रदान करूंगी सुधाम अमृत को इमाम। इस अनुवाद मेरे पीछे बोली तत्पश्चात अमृत पात्र को अपने हाथ में लेकर भगवान थोड़ा मुस्काए और फिर आकर्षक शब्दों में बोले उस मोहिनी मूर्ति ने कहा मेरे प्रिय असुरो मैं जो कुछ भी करूं चाहे वो खरा हो या खोटा यदि तुम उसे स्वीकार करो तब मैं इस अमृत को तुम लोगों में बांटने का उत्तरदायित्व ले सकती हूं। श्लोक के शब्द किस प्रकार से हैं हम समझेंगे। ततो ततो का मतलब है उसके बाद ना? उसके पहले कुछ घटना हुई है इस श्लोक में ततो शब्द पैरों में आया उसके बाद है ना। तो उसके बाद मतलब क्या है कि इसके पहले की जो घटना है वो ये है कि असुरों ने अमृत का पात्र उस मोहिनी को दे दिया जो मना कर रही है। आश्चर्य की बात यह है जो मना कर रही है और अपनी निंदा कर रही है मुझ पर आप लोग क्यों विश्वास करते ये बुद्धिमानी नहीं है। मुझ पर विश्वास करना बुद्धिमानी नहीं है। उसी को ही दे दिया बलपूर्वक दे दिया लो देखो माया का कितना प्रभाव है। भगवान की माया कितनी बलवान है। जो भगवान के शरण में नहीं आते वो माया के किस प्रकार वशीभूत होते हैं। कितना मतलब बल है बलम में पश्य माया। भगवान की माया का बल देखो कितना है। तो जो देवी अपनी निंदा कर रही है और समझा रहे कि मेरा विश्वास ना करो उसी को है जो है दे दिया है ना। और अभी भी लेकर के भी भगवान स्त्री के रूप में ततो गृहीत्वा अमृत भाजनम अमृत का कलश लेकर के हरि बभास हरि बवास में भगवान बोले, तो भगवान के रूप में नहीं है, किस रूप में है, स्त्री के रूप में है। स्त्री रूप में बोले ईसत स्मित है, कुछ है मुस्कान सहित शोभ आगेरा शोभनीय माने में बोले। तो शब्द तो वही है लेकिन जो स्वर है वो बड़ा मधुर है, मधुर स्वर है, और मुस्कान सहित है। बोले यदि अभिपेतम, यदि आपको स्वीकार हो, त्वचा साधु असाधु का क्वा का मतलब कैसा भी, साधु या साधु, कृतम मया मेरे द्वारा किया गया, मेरे द्वारा किया हुआ साधु कार्य हो या साधु कार्य हो, क्योंकि इस स्त्री ने पहले बता दिया था कि स्त्रियों में विश्वास नहीं करना चाहिए, और उनका मन जो है वो भी नहीं जानती है कि किस समय उल्टा होगा किस समय सीधा। उन्होंने कहा पुंसल्या, तो मैं जो है एक पुंसली स्त्री हूं। पुंसली स्त्री का मतलब है कि स्वतंत्र, स्वतंत्रता से अपने इच्छा के अनुसार चलती हूं। मेरा कोई न तो पिता है, ना पति है, ना पुत्र है, आजाद। तो एक आजाद स्त्री का जो मन है वो किस समय कैसा हो जाए। पुंसली का मतलब है कि एक पुरुष से दूसरे के पास, दूसरे तीसरे के पास अपना अपनी इच्छा के अनुसार बदलती रहती है पुरुषों को, तो पुंसली कहलाती है। तो मैं तो पुंसली हूं। उन्होंने पूछे, पहले पूछा था कि तुम किसकी पुत्री हो या किसकी पत्नी हो, तुम क्या चाहती हो, तो बता दिया कि मेरा जो है कोई पति नहीं है, कोई मेरा पुत्र नहीं है, मेरा पिता नहीं है, अपनी इच्छा के अनुसार अपना जो है संबंध बनाती हूं पुरुषों के साथ, और ऐसे में अच्छा नहीं है मेरे साथ विश्वास करना, मेरे पर विश्वास करना अच्छा नहीं है। देखो माया का बल देखो कितना कितना बल है माया का, कि वो खुद ही अपना सब तत्व तो बता रही है कि विश्वास नहीं करना चाहिए, उसी पर ही जो है वो विश्वास कर रहे हैं और दे रहे हैं, है ना। और अभी फिर कह दिया उसने, अभी फिर कहा उसने, क्या कहा कि अभिप्रेतम, यदि स्वीकार है आप, क्योंकि मैं खुद भी नहीं जानती कि मैं क्या करूंगी। पुंसली स्त्री का जो मन होता है वो खुद भी नहीं जानती उसका मन किस समय कैसा हो, और राग और द्वेष खड़ा हुआ है, है? तो किसी पुरुष के पास जाती है राग के कारण, और फिर द्वेष पैदा हो जाता है तो उसको छोड़ देती है, तो तीसरे पुरुष के पास जाती है, तो राग द्वेष के कारण जो है हर कार्य करती है, तो उसका कब राग किसके प्रति हो जाए तो जाएगी, और किससे द्वेष हो जाए तो उसको छोड़ देगी। राग द्वेष के अनुसार वो जो है कोई भी चीज ग्रहण करती है छोड़ती है, तो अपना उसका राग द्वेष है। तो इतना मतलब ये है स्पष्ट, तब मैं विभाजन कर विभजे, विभजे माने विभाजन करूंगी, अमृत का विभाजन करूंगी, अमृत विभाजन करूंगी, है ना। हम सुने कृपा तात्पर्य क्या लिखते हैं, सिला कृपा की भगवान किसी के आदेश से बने नहीं, वे जो कुछ करते हैं वो परम पूर्ण है। कृपा तो गहराई से इस गहराई में जा रहे हैं कि भगवान जो कर रहे हैं वो तो बहुत पूर्ण है भगवान का, जो असुरों को नहीं देना है परम पूर्ण है। निस्संदेह असुर भगवान की माया से मोहनग्रस्त हो गए थे, अतः मोहिनी मूर्ति ने उनसे वचन ले लिया कि वह जो कुछ भी करेगी उन्हें मारने होगा। और यहां पर देखिए एक बात और भी है कि असुर अपने वचन के कभी पक्के नहीं होते, उनसे कोई भी वचन आप ले लो वो वचन दे देंगे और फिर अपने वचन को तोड़ भी देंगे, उन्हें कुछ है? इसका जो है फर्क नहीं पड़ता है कि उन्होंने क्या वचन बोला था और फिर वचन तोड़ दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां पर वचन नहीं तोड़ेंगे, यहां पर वचन नहीं करेंगे। तो ये जो है मतलब ये है माया का बल है। इस इस श्लोक का जो हिंदी पद्य अनुवाद है ये विष्णुप्रिया देवी ने किया है। प्रभु ने अमृत कलश को फिर अपने हाथों ले लिया, मधुर स्मित अधरों के लिए फिर मीठा ये वचन कहा, उचित अनुचित मैं जो भी करूं, यदि वो तुमको हो स्वीकार इस अमृत वितरण का ले सकती हूं मैं अधिकार। ये जो है भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं। अब देखिए भगवान की जो लीला है वो बड़ी गहरी है। जिस समय देवता लोग आए थे असुरों से पराजित होकर के, तो भगवान ने उनके साथ कुछ मीटिंग की थी, सभा की थी उनके साथ में, और कहा था कि तुम लोग जो है असुरों के साथ में मित्रता करो। लेकिन वो मित्रता कैसी होगी? अस्थाई, टेम्परेरी, कपटपूर्ण मित्रता करो, क्योंकि असुरों की शक्ति इस समय ज्यादा है, तो तुम उनके साथ मित्रता करो और समुद्र बंधन, क्षीर सागर का बंधन करके जो अमृत मिलेगा वो उनको और तुम्हें सबको बांटा जाएगा। तो इस शर्त से जो है अमृत मतलब मंथन करो, समुद्र मंथन करो अमृत, लेकिन अमृत तुमको ही मिलेगा, उनको नहीं मिलेगा, उनको परिश्रम ही केवल मिलेगा, अमृत तुमको मिलेगा। और फिर भगवान ने एक दृष्टांत बताया था चूहे और सांप का। तो सांप ने चूहे के साथ मित्रता की थी, फिर वो मित्रता कैसी थी? अपनी स्वार्थपूर्ण मित्रता थी। तो भगवान जो है असुरों के साथ बताते हैं कि अपनी स्वार्थपूर्ण मित्रता करो उनके साथ में। तो एक सर्प था और एक चूहा, तो एक ही टोकरी में बंद हो गए। तो चूहा डर रहा है सर्प से कि मुझे खा लेगा, तो सांप कहता है डरो नहीं डरो नहीं, अभी तो मैं भी संकट में, तुम भी संकट में, तो क्या करो तुम जो है छेद करो टोकरी। तो सांप छेद नहीं कर सकता किसी टोकरी में, तो तुम छेद करो टोकरी में तो हम दोनों निकल जाएंगे बाहर। तो चूहे ने जो है मान लिया, तो छेद कर दिया, तो सांप ने क्या किया, चूहे को खा लिया और छेद से बाहर निकल गया। तो ये जो है भगवान स्वयं ये शिक्षा दे रहे हैं। सामान्यतः ये तो गलत है, मनुष्य का जो है जो धर्म है तो ऐसा नहीं, ये तो अधर्म है। लेकिन समय स्थान परिस्थिति के अनुसार वही जो धर्म है वो अधर्म का रूप धारण कर लेता है और अधर्म धर्म का रूप धारण कर लेता है। असुरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो ये भी जो है भगवान ने शिक्षा दी। और फिर जब समुद्र मंथन हुआ तो भगवान ने एक उनको चेतावनी ये भी दी थी कि कोई चीज अमृत के अलावा कोई भी चीज निकले तो इसमें तुम लोग जो है मतलब आग्रह नहीं करना अपना कि मुझे ये चाहिए, जिसने ले लिया सो ले लिया और फिर आगे काम शुरू करो। जब तक अमृत ना मिले तब तक मंथन चलता रहेगा, और कोई भी चीज मिली और किसी ने ले लिया तो ले लिया, मतलब कोई किसी तरह का इसमें झगड़ा नहीं करना। और असुर लोग तो झगड़ा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो समुद्र मंथन जब शुरू हुआ तो भगवान ने जो है देवताओं के साथ वासुकी सर्प का मुंह पकड़ा और असुरों को पूछ की तरफ काम करने के लिए कहा। कुछ लोग सो रहे हैं, हरिओम नींद आ रही है, ठीक से विश्राम नहीं किया, या तो खड़े हो जाओ पीछे, या और क्या करना है वो आपको विचार करना चाहिए। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, तो मुंह पकड़ लिया सर्प का, तो असुरों ने तुरंत स्ट्राइक कर दी, अपने हाथ बांध के खड़े हुए, हम काम नहीं करेंगे, हम जो है कश्यप मुनि के पुत्र हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत पवित्र है और सांप की पूंछ अशुद्ध होती है, अशुभ होती है, हम सांप की पूंछ नहीं पकड़ेंगे, ये काम हम नहीं करेंगे। तो भगवान तो जहले ही थे, तो भगवान ने सांप की पूंछ पकड़ ली, सब देवता सांप की पूंछ में आ गए और वो जो है उसके मुंह में आ गए और मुंह से क्या हुआ, सांप का पिस निकला, सब काले हो गए। तो भगवान की शिक्षा थी देवताओं से कि तुम लोग जो है झगड़ा करने नहीं करना, काम धेनु गाय मिली, अश्वेस्त्र घोड़ा निकला और अप्सराएं निकली, तो जो भी सामान निकला तो उसको जो है जो भी ले तो ले। तो इस तरह से जो है चलता रहा और अंत में धन्वंतरी भगवान का अवतार प्रकट हुआ समुद्र मंथन से और उनके हाथ में अमृत का कलश। अब वैसे तो और शर्त के अनुसार क्या करना चाहिए, तो भैया अभी अमृत का कलश है ये जो है बांटा जाए और जो है उस समय मीटिंग की जाए और सब बैठ करके विचार करेंगे कि कैसे अमृत को बांटना है। लेकिन जैसे अमृत का कलश निकला तो भगवान चाहते थे कि पहले अन्याय असुर लोग करेंगे, पहले असुरों की तरफ से अन्याय हो, इसलिए भगवान और देवता लोग जो है कुछ कर ही नहीं रहे, कुछ बोल ही नहीं रहे। अमृत का कलश निकला और असुर लोग इंतजार कर रहे थे कि भाई बात करो कि कैसे करना क्या करना है, असुरों के अंदर इतना विचार करने की शक्ति नहीं होती कैसे करना क्या काम करना है, लेकिन देवताओं के अंदर होती है और भगवान के अंदर होती है। भगवान असुरों को अगर इशारा करते हैं और विचार करते हैं भी कैसे आप लोगों को बैठना है और कितना कितना अमृत सबके हिस्से में आएगा, तो वो सब विचार करने में तैयार है असुर लोग। लेकिन बहुत देर हो गई, भगवान आगे बढ़ रहे हैं, देवता लोग आगे बढ़ रहे हैं, अमृत का कलश जो है धन्वंतरी भगवान के हाथ में है, तो वो भी धन्वंतरी भगवान भी अपने हाथ में अमृत का कलश दिए हुए हैं, जैसे उनको भी कुछ पता नहीं कि क्या करना है। जब बहुत देर हो गई तो असुर लोगों को जो है लगा कि अगर इस तरह से नहीं बांट रहे लोग तो फिर हम लोग ले लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं, तो छीन लिया और छीन लिया तो देवता लोग जो है भगवान भगवान का इशारा चाहते थे या भगवान का क्या इशारा है, तो भगवान ने कहा कि चिंता मत करो अमृत तुम लोगों को ही मिलेगा। और अब वो जो है छीने तो अब वो भी आपस में भी बांटना नहीं जानते कि भाई चोरी का बाल है तो अब जो है अब तो ईमानदारी से अब तो ईमानदारी से बांटा जाए, है ना, तो कौन पिएगा अमृत, तो जो बलशाली है वो पहले पिएगा, तो जो बलशाली होता था वो अमृत का कलश छीन लेता था और भागता था, और दूसरा उससे बलवान वो छीन लेता था इधर भागता था, तो तीसरा बलवान उसे छीन लेता इधर भागता, तो अहम पूर्वम नतम नतम इति प्रभु, अरे प्रभु मैं पहले पीऊंगा तुम नहीं पियोगे प्रभु, अहम पूर्वम नतम नतम इति प्रभु, तुम नहीं मैं प्रभु, प्रभु मैं। इस प्रकार से उनमें कलह हो गया और वो जैसे फुटबॉल या वॉलीबॉल होता है ना, वॉलीबॉल होता है वॉलीबॉल, तो वॉलीबॉल जो है इधर से उधर उधर से उधर वो लेके जाता है, यहाँ तो उछालते हैं लेकिन उछाल नहीं रहे, अमृत का कलश ले लेकर के भाग रहा है, फिर दूसरा उनके ऊपर ही ऊपर जो है एक दूसरे ले लेकर के जो है वो भागा दौड़ी शुरू हो गई। उसी समय भगवान जो है मोहिनी रूप धारण करके आ गए। अब देखो कितना आश्चर्य, मोहिनी रूप धारण करके आ गए तो उनका सब कलह समाप्त हो गया और जो है आप देखे खड़े हो गए, तो बहुत बड़े आश्चर्य की घटना है। अब अमृत जैसे आश्चर्य की कोई आवश्यकता नहीं, अब अमृत की क्या आवश्यकता है ना, ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य है, बहुत बड़ा अमृत है, तो भगवान जो है और फिर देवी तुम कौन हो, तुम किसकी पुत्री हो, तुम किसकी पत्नी हो, तुम क्या चाहती हो, कहाँ जा रही हो, क्या करना चाहती हो, क्या प्राप्त करना चाहती हो, है ना, उन्होंने पूछना शुरू कर दिया और फिर उसने कुछ उत्तर नहीं दिया तो वो खुद ही जो है चूंकि बात करना चाहते हैं तो बोले देखो ये अमृत का जो है कलश है हम लोग आपस में ले नहीं पा रहे, आपस में हम लोग जो है इस अमृत का कलश ले नहीं पा रहे हैं, तो तुम जो है अमृत का कलश ले लो और बांट दो, है ना। तो उन्होंने मतलब ये कहा, वयम कश्यप दायादा भ्रातरः कृत बोलुषा। तो अब जो है उन्होंने देवताओं की बात बता दी कि हम लोग जो है कश्यप के पुत्र हैं, देवता भी हैं और असुर भी हैं, है ना। विभेदस्व यथा न्यायम नैवभेदो यथा भी। तो यथा न्याय आप विभाजित कर दो अमृत को, जिसमें किसी प्रकार का भेद भाव ना हो, सत्ता की भावना से आप जो है वितरण करो। तो ये जो है उन्होंने मोहिनी से कहा। और उसने जो है मतलब मोहिनी ने फिर सब बातें बताई कि मैं तो मतलब कैसी स्त्री हूं, आप लोगों को जो है पता होना चाहिए मैं कैसी स्त्री हूं, है ना। तो विश्वासम पंडित हो जातो कामनी सुन जाती ही। तो पंडितों को जो है कामनी का जो है विश्वास नहीं करना चाहिए। तो कोई स्त्री जो है अगर काम के अधीन हो जाए तो वो कामनी कराती है, तो कामनियों पर जो है पंडितों का जो है विश्वास नहीं होता, पंडित लोग विश्वास नहीं करते, है ना। ये उन्होंने कहा स्वैरणी कामनी स्वैरणी पुंसली। तो अपने को जो है भगवान मैं कामनी हूं, स्वैरणी हूं, पुंसली हूं, तो ये स्त्रियां जो है अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करती हैं और वे खुद भी नहीं जानती हैं कि किस समय क्या चाहेंगी और क्या क्या देंगी, किसको चाहते हैं किसको क्या करती हैं, इन्हें खुद पता नहीं होता अपना। किस तरह से उन्होंने कहा और इतने कहने के बावजूद भी उन्होंने अमृत का कलश दे दिया, अमृत का कलश दे दिया, ये सोच करके दे दिया कि अभी तो अपेक्षा के अनुसार जहां चली जाएगी वो चली जाएगी, अमृत का कलश अगर दे दिया तो कम से कम कुछ देर हम इसको देख तो सकेंगे, इसका इसकी मुस्कान तो हमें जो है कम से कम देखने को मिलेगी। तो अमृत का कलश उन्होंने दे दिया और अब भगवान ने ले लिया अमृत का कलश, तो उन्होंने फिर तो भी हंस मुस्कुराहट, यहां पर जो मुस्कुराहट है ये है सबसे बड़ा अमृत, जो अमृत से ज्यादा बढ़कर के है, तो जिससे अमृत उनके लिए बिल्कुल ठीक पड़ गया, अमृत का कुछ महत्व ही नहीं रहा। ये इतनी सुंदर मुस्कान है, इस मुस्कान को देख करके अब वो जो है अमृत नहीं चाहते हैं। और मोहिनी मूर्ति जो है ये कह रही है कि देखो मेरा तो आप कुछ भी पता नहीं है, मेरा जो मन है वो किस समय कैसा हो जाए और किससे राग हो जाए किससे द्वेष हो जाए कुछ पता ही नहीं है, तो मैं आपके साथ अन्याय करूं न्याय करूं जो भी करूं, अगर आपको स्वीकार है तो आप जो है तो मैं अमृत बांट सकती हूं। और इस तरह से जो है मोहिनी ने शुरू कर दिया, ये कार्य शुरू कर दिया। तो ये स्थिति होती है माया मोहित जीव की स्थिति ये होती है। कलयुग में जो असुर है और देवता है वो एक ही शरीर में होते हैं, एक ही शरीर में। सचयुग में असुर और देवता अलग अलग स्थानों में होते थे और त्रेतायुग में असुर और देवता एक ही पृथ्वी में होते थे और द्वापर में असुर देवता अलग अलग परिवारों में होते थे, लेकिन कलयुग में असुर और देवता एक ही शरीर में है। तो आपके अंदर आसुरी भाव भी और दैवी भाव दोनों आपके अंदर हैं और आप चाहें तो आसुरी भाव को विकसित करें या दैवी भाव को विकसित करें। तो जब भगवान को छोड़ देते हैं तो आसुरी भाव विकसित हो जाता है। तो आजकल की जो फिल्में हैं और फिल्मी गाने हैं ये सब जो है इसी प्रकार के हैं। तो जहां पर जो मुस्कान की बात आई है तो मुस्कान के संबंध में एक फिल्मी गाना है, उसमें क्या बताया है कि मुस्कान को जो है देख करके अब अमृत की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे अमृत की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी मुस्कान में इतना अमृत है कि वो मुझे जला लेगी, तुम अपनी मुस्कान से मुझे जला दोगी। तो एक गाना है आके हमारी कब्र पर जो तूने मुस्करा दिया, हम तो मर गए, और हमारे कब्र बन गई, तो वो आत्मा तो नहीं मानते कि आत्मा को दूसरे शरीर मिल जाता है, तो कब्र में हमारी आत्मा थी, तो आके हमारी कब्र पर जो तूने मुस्कुरा दिया तो सारा चमन जगा दिया सब कुछ, तो तुम उसको जिंदा कर लो कि मुस्कान के द्वारा, अगर मैं मर भी जाऊंगा तो मुझे अनुमति कोई आवश्यकता नहीं, और भगवान की भी कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान भी जो है सोचते होंगे कि किसने बनाया इतना सुंदर रूप, तुम्हारा रूप इतना सुंदर किसने बनाया, एक गाना है खुदा जब आसमां से इस जमीन पर देखता होगा, उनकी भावना है कि खुदा तो आसमान में है, आसमान से ही देखते होंगे हर जगह आसमान से, खुदा जब आसमान से इस जमीन पर देखता होगा मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा, उनको जो है तो उनको भी आइडिया नहीं, भगवान के पास भी आइडिया नहीं है इतना सुंदर हो सकता है कोई बना सकता है, तो हमें भगवान की भी आवश्यकता है, तुम्हारी सुंदरता देख करके तुम्हारी मुस्कान से जो है अपना तो भगवान की आवश्यकता है ना अमृत की आवश्यकता है। तो यही जो आसुरी भाव है ये आजकल की फिल्मों में है, ईश्वर रहित जहां समाज जो है ईश्वर रहित होता है किस प्रकार के विचार अपने आप पनपते हैं, और ये जो विचार है ये विकसित होते हैं और ये जो है फलीभूत होते हैं, खूब पल्लवित होते हैं फलीभूत होते हैं, तो ये इसी प्रकार के गाने हैं आजकल की फिल्मों के जो गाने हैं सर इसी प्रकार के हैं। तो ये जो है आज के विषय का आज के श्लोक का विषय है। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है कोई चर्चा है या मैं प्रश्न करूँ, मैं प्रश्न करूँ आपका प्रश्न भाई
सोची, जैसे यहाँ पर अभी चर्चा चल रहा अमृत का, जैसे मोहिनी भगवान ने अमृत को वितरण किए तो क्या अमृत अभी भी स्वर्ग में रखा हुआ है?
हाँ,
और उसमें खाली नहीं होगा मटके?
हाँ, स्वर्ग में अमृत रखा हुआ है, अमृत का कलश रखा हुआ है और देवता लोग अमृत लेते हैं, लेकिन एक बात और भी है कि अमृत पीने के बाद भी इस भागवतम में ही जो है हम देखते हैं अमृत पीने के बाद यद्यपि देवता बलवान हो गए और असुरों की पराजय हुई, लेकिन बाद में शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या के द्वारा बलि महाराज को जीवित कर लिया और भी जो मरे हुए असुर हैं उनको भी जीवित कर लिया, और फिर देवताओं के ऊपर चढ़ाएगी तो देवताओं को भागना पड़ा, स्वर्ग से भागना पड़ा। तो इसका मतलब क्या है कि ये अमृत जो है मतलब वैसा नहीं है, अमृत को पी करके जो है भगवान ने जब चक्र से गर्दन काटी राहु की तो उसका शरीर जो है जीवित रहा, तो देवता लोग भी डर गए, अगर मान लो अमृत पी लिया उन्होंने और उनको काटा जाएगा तो उनके शरीर टुकड़े हो जाएंगे, तो वो भी अच्छी स्थिति तो नहीं है, कष्टकारक स्थिति तो है, तो उनको भागना पड़ा। तो अमृत जो है मतलब ये ऐसा नहीं है जो कि हमेशा के लिए मृत्यु का भय ना रहे, तो इनको बार बार अमृत पीना पड़ता है, अमृत का असर कुछ समय तक रहता है फिर इनको पीना पड़ता है, और मृत्यु से फिर भी इनको भयभीत होना पड़ता है और भागना पड़ता है।
जैसे अमृत है, अमृत वहां जो स्वर्ग में रखा हुआ है अगर बांट दिया खत्म हो जाती है उसमें अपने वृद्धि होती रहती है?
हाँ, कुछ ऐसा भी लग रहा है कि उसमें जो है वो समाप्त नहीं होता है, वो निकालते हैं कितना निकालते हैं कब निकालते हैं तो मुझे पता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा भी है कि अमृत का कलश जो है वहां पर रखा है सर।
रोजी मेरा और एक प्रश्न था, कुछ रोजी ये था जैसे भगवद्गीता में कहा गया कि ऐसे कभी नहीं था कि हम लोग पहले नहीं थे, तो भगवान भी थे और हम लोग भी थे, लेकिन अभी जब कलयुग में जितने जीव है जहाँ मनुष्यों के अंदर पाप प्रवृत्ति इतनी ज्यादा है और सत्ययुग में नहीं होता था, इस समय क्यों पाप प्रवृत्ति इतनी ज्यादा मनुष्य में भरी हुई, जैसे आप कहते हैं असुर और देवता दोनों ही दोनों का भाव जो है मनुष्य के अंदर रहता
है, आसुरी भाव और देवी भाव दोनों कलयुग में है, लेकिन कलयुग जो है आश्रय भाव को विकसित करता है। अगर आप जो है अपना कुछ उपाय नहीं करते हैं, कलयुग से बचने का उपाय नहीं करते हैं, तो कलयुग जो है आपके आश्रय भाव को ही विकसित करेगा और आपको नरक में ले जाएगा। तो कलयुग का जो है बहुत खतरनाक समय चल रहा है, लेकिन उसका उपाय भी चल रहा है। जैसे कि बरसात होती है तो फिर छाते भी बिकते हैं, बरसात से बचने के छाते भी बिकते हैं। तो इसी प्रकार से हरिनाम भी दिया जाता है, रूपादि ग्रंथ भी दिए जाते हैं तो कलयुग से रक्षा करने के लिए। तो जो लोग उपाय अपना कर लेते हैं तो कलयुग से वो बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं, जो उपाय नहीं करते हैं तो कलयुग उन पर हावी होता है और वो जो है फिर नरक की ओर जाते हैं। ठीक है, और कोई? हाँ जी,
बहुत धन्यवाद प्रभु जी, रोचक तरीके से आपने समझाया। हम देखते हैं प्रभु जी लाइक पूतना कृष्ण को मारने आए और उन्होंने कृष्ण को जहर किया, और असुर लोग भगवान का भोग करना चाहते थे और उनको अमृत दिया। तो पूतना को तो भगवान ने माँ का स्टेटस दे दिया, लेकिन असुरों को कुछ भी उद्धार नहीं किया।
पूतना की कुछ स्थिति विशेष है, क्योंकि पिछले जन्म में ये बलि महाराज की पुत्री थी रत्नमाला। तो जब वामन देव आए थे बलि के यज्ञ में तो इसने देखा कि बहुत सुंदर बालक है और उसका वात्सल्य जागा और उसकी बड़ी तीव्र इच्छा हुई कि इस बालक को अगर मैं अपना स्तन पिलाऊं तो मुझे बड़ा सुख मिलेगा। तो बड़ी इच्छा हुई स्तन पिलाने की इच्छा हुई, लेकिन बाद में जो है बातचीत हुई बलि महाराज के साथ में और इस बालक ने बलि महाराज का सर्वस्व छीन लिया, बांध दिया। तो फिर इसका भाव बदल गया और फिर इसका भी ये विचार हुआ कि अगर मेरा बस चलता तो इस बालक को मैं जहर पिला देती। तो दोनों इच्छाएं हुई उसकी, तो अगले जीवन में उसकी दोनों इच्छाएं एक साथ पूरी हो गई, एक साथ पूरी हो गई। स्तन पिलाने की इच्छा थी और जहर पिलाने की इच्छा थी, तो उसने कहा कि स्तन में ही जहर लगा ली कि तू अपनी दोनों इच्छाएं को पूरी कर ले, स्तन पिलाने की इच्छा भी पूरी कर ले, जहर पिलाने की इच्छा भी पूरी कर ले। तो चूंकि स्तन पिलाने की इच्छा थी उसकी, तो इसके फलस्वरूप भगवान ने उसको माता का स्थान दे दिया, धात्री। धात्री ले भी कहते धात्री उचिताम, धात्री के लायक उसको पद दे दिया। माता तो एक ही यशोदा, भगवान के धाम में माता तो एक ही यशोदा, लेकिन धात्री माता के समय बहुत सी स्त्रियां हैं, तो धात्री का पद दे दिया उसको। लेकिन मारने की इच्छा थी उसकी, तो उसका दंड भी दिया भगवान ने उसको, उसको मृत्युदंड दिया। लेकिन मृत्युदंड तो बहुत छोटा है, मृत्युदंड तो बहुत छोटा है, थोड़ी देर के लिए उसको मार दिया, लेकिन वो जो पुरस्कार है वो क्या है, हमेशा के लिए मिल गया, माता का पद मिल गया। तो इससे ये पता चलता है कि अगर किसी की भगवान की सेवा करने की इच्छा होती है और बहुत तीव्र इच्छा हुई भगवान की सेवा करने की, उसके साथ उसका जो विचार बदल गया, वो विचार भी जो बदला तो अपने पिता के पक्ष में था और पिता उसके महाभागवत बलि महाराज, महाभागवत भगवान को आपने निवेदन पूर्ण समर्पण कर दिया, तो भगवान ने उस इच्छा का भी जो है स्वागत किया। क्योंकि महाभागवत बलि महाराज 12 महाजनों में से एक है, उनकी पुत्री, तो अपने पुत्र के पक्ष में, नहीं अपने पिता के पक्ष में उसने इच्छा की थी भगवान को मार डालने की, तो भगवान ने उसका भी जो है सम्मान किया। तो मृत्युदंड जो दिया वो तो थोड़ा सा था, लेकिन उसको जो है स्तन पिलाने की इच्छा और साथ साथ महाभागवती पुत्री, ये सब विचार करके उसको क्या पद दिया, धाय का पद दिया। यम यम माप स्मरण भावम तिरते बलिवरम, अंतकाल में जिस भाव का स्मरण करते हुए शरीर त्याग। तो भगवान जो है उसे स्तर नहीं छोड़ते हैं, तो उसका मरते समय उसका भाव फिर बदल गया, उसका भाव बदल गया, माता का भाव आ गया कि मेरा पुत्र है, मेरा स्तर पी रहा है, और भगवान जो है उसके प्राणों को उन्होंने चूस लिया, तो प्राण भी उसके निकले, स्तन से निकले। प्राण शरीर के नौ द्वारों से निकलते हैं, पापी प्राण मलमूत्र के द्वार से निकलते हैं, नीचे के द्वारों से निकलते हैं, तो उनका मल त्याग देते हैं, या मूत्र त्याग देते हैं, मल द्वार फट जाता है, मूत्र द्वार फट जाता है सर छोटे समय, और जो पुण्यात्मा होते हैं उनके प्राण सात द्वारों से निकलते हैं, जो ऊपर के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात द्वारों में से किसी एक द्वार से निकलते हैं। और कोई बड़े योगी होते हैं तो यहाँ से फाड़ करके प्राण निकलते हैं ब्रह्मेंद्र को, अपनी इच्छा के अनुसार फिर किसी लोक में जा सकते हैं या वैकुंठ में भी जा सकते हैं। भगवान ने उसके प्राण कहां से निकाले, स्तन के द्वारा, और पिए, प्राणों को पी लिया। तो उसका जो भाव है वो आत्मसमर्पण का हो गया, माता का भाव हो गया कि स्तन उसने पिलाया भगवान, इसी भाव में उसने शरीर छोड़ा और उसको जो है वो उसी प्रकार का शरीर प्राप्त हो गया। तो भगवान का स्मरण किया, किस भाव में स्मरण किया उससे फर्क पड़ता है, उसने भगवान का स्मरण किया। तो भगवान से कोई व्यक्ति अगर जुड़ जाता है किसी प्रकार से तो उसका जो है कल्याण ही कल्याण है, ठीक है ना। आपके प्रश्न करता हूँ,
भगवान के जितने भी अवतार होते हैं उनके सनातन धाम होते हैं, तो भगवान के जितने भी अवतार होते हैं उनके सनातन धाम होते हैं, तो मौनी अवतार का भी सनातन
धाम भगवान के, यहाँ तक की अवस्था भी, अवस्था के अनुसार भी उनके धाम। तो गोकुल धाम में भगवान जो है शिशु के लिए रहेगा, तो वहां पर वो जो है उनकी यशोदा माता के साथ जो है वो धाय माता में, भगवान की जो है मथुरा धाम है जहाँ उनकी मथुरा की लय होती है, द्वारका धाम है द्वारका की लय होती है, गोलोक धाम में भी अलग अलग हिस्से हैं, ठीक है ना। और ये प्रश्न आपका,
जैसे इसमें अनुवाद में जैसे भगवान बता रहे हैं तो स्वभाव, तो ये सामान्यतः स्त्री स्वभाव बता रहे हैं कि विशेष रूप से अपना स्वभाव बता रहे हैं कुछ लोगों के लिए ये।
अच्छा, अनुवाद में
जी,
अनुवाद में उन्होंने कहा कि मैं एक पुष्करी स्त्री हूँ, तो मैं जो भी करूँ सही गलत वो तुम स्वीकार करो, तो ये जो है स्त्री का जो है स्वभाव। अगर स्त्री स्वतंत्र हो जाए तो कितनी बिगड़ जाती है, यहाँ पर ये बताया गया है ना। इसलिए स्त्रियों की स्वतंत्रता उनके लिए ही घातक है, जैसे गाय है तो उसकी रक्षा की आवश्यकता है, वो अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकती गाय, अगर आप उसको छोड़ देंगे तो गाय खुद भी नहीं जानती कि उसकी सुरक्षा कहाँ होगी कैसे होगी। जैसे बच्चे हैं उनकी भी सुरक्षा की आवश्यकता है, तो स्वतंत्र स्वतंत्रता में बच्चे बिगड़ जाएंगे और गाय भी संकट में पड़ जाएगी, स्त्रियां भी जो है संकट में पड़ जाएंगी। तो लोग जो है विरोध करते हैं कि नहीं ये स्त्री को जो है ये जो गुलामी है तो ये ठीक नहीं है, स्त्रियों को पुरुषों के बराबर अधिकार मिलने चाहिए। तो ये जो है प्रभुपाद बताते हैं कि ऐसे गलत पुरुष लोग ही जो है इस तरह के जो है तर्क रखते हैं, क्योंकि वे स्त्रियों का शोषण करना चाहते हैं, स्त्रियों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो ये जो है जो गलत पुरुष लोग होते हैं जो स्त्रियों का शोषण करना चाहते हैं, उनकी स्वतंत्रता का फायदा उठाना चाहते हैं, तो वे लोग ही इस प्रकार के विचारों को प्रोत्साहन देते हैं कि स्त्रियों को पुरुषों के समान स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो ये जो है स्त्रियों के लिए खुद ही बहुत घातक है, बहुत खतरनाक है उनकी अपनी स्वतंत्रता। इसलिए स्त्रियों के लिए सुरक्षा इसी में है कि वो बचपन में अपने पिता के संरक्षण में रहे, जवानी में पति के संरक्षण में रहे, बुढ़ापे में अपने पुत्र के संरक्षण में रहे। वो पति पिता या पुत्र कोई ना कोई मतलब उनका संरक्षक होना चाहिए, ये शिक्षा मिलती, ठीक है। हाँ जी,
हरे कृष्ण। तो जैसे भगवान मोहिनी रूप में प्रकट हुए, तो भगवान की यह माया वाला रूप था या भगवान विष्णु?
भगवान का ये अच्छा प्रश्न है। भगवान का जो ये रूप है ये तो दिव्य है, भगवान का ये जो रूप है ये दिव्य है। अगर असुरों का मन इस रूप में भी लग रहा है तो ये भी उनकी स्थिति दिव्य है। लेकिन होता क्या है बाद में कि भगवान ने देवताओं को तो अमृत दे दिया, और जब तक भगवान उनको मुस्कुराहट दिखा रहे थे तब तक असुरों का कोई नुकसान नहीं हो रहा था, वो अपना नुकसान नहीं मान रहे थे और कहते थे ठीक है स्त्री को जो है स्त्री के साथ जो है कोई दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, और बड़ा अपना धर्म बताते हुए कि स्त्री के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, और वो कुछ भी करे, अन्याय करे, तो हमें सहन करना चाहिए। और मन में बड़ा लाभ मानते थे कि हमें उसकी मुस्कुराहट देखने को मिल रही है, और भगवान मुस्कुराहट वो दिखा रहे थे और देवताओं को अमृत मान रहे थे, और देवता लोग जो है उस स्त्री को अपनी माता समझ रहे हैं और लाभ उठा रहे हैं अमृत पीने का, और असुर लोग जो है उसको अपनी पत्नी समझ रहे हैं तो मुस्कुराहट का लाभ उठा रहे हैं। फिर अंत में क्या हुआ, जब देवताओं को अमृत मिल गया पूरा, सब पी चुके, तो फिर भगवान जो है अपने रूप में आ गए, पुरुष रूप में आ गए। तब उनको बड़ा गुस्सा आया कि अब ना तो वो स्त्री मिली ना अमृत मिला, तो फिर सीधे भगवान ने मतलब बता दिया कि तुम्हारे साथ मैंने क्या किया है, छल किया है। तब फिर युद्ध शुरू हुआ कि बहुत बड़ा न्याय हुआ, वो स्त्री भी गई, अब उसकी मुस्कुराहट भी नहीं देखने को मिल रही है, और यहां अमृत भी जाने को मिल गया, तब युद्ध शुरू हो गया। तो बात यही है कि भगवान तो ऐसे थोड़े ही इतने सस्ते थोड़े हैं कि भगवान इस तरह से स्त्री लोग में किसी को मिल जाए। तो भगवान तो वास्तव में भोगता है, भगवान असली भोगता है ना, तो वो जो है इस तरह से स्त्री के रूप में भगवान को अगर भोगना चाहते हैं तो उनको तो माया की स्त्री मिलेगी, भगवान थोड़ी स्त्री रूप में आएंगे उनके उनके भोग के लिए। तो दुर्दित्य भगवान को भोगना चाहता है तो भगवान की माया ही जो है उनको भोगने को मिलती है, जो कि उनको कष्ट पहुंचाएगी, भगवान नहीं मिलेंगे। ठीक है,
हरे कृष्ण प्रभु जी। आप जैसे बता रहे थे विप्रवचन में कि पहले भी भगवान ने जो सर्प और चूहे का न्याय बताया था, जो तो प्रभु जी मतलब ऐसा देखने को मिलता है कि जो आप बता रहे थे कि देश काल परिस्थिति के अनुसार धर्म अधर्म में बदल जाता है और धर्म धर्म में बदल जाता है, और अभी भी जैसा बताया कि असुर भी बता रहे हैं मोहिनी मूर्ति को, जब वो गलत कर रही हैं कि असुरों को अमृत नहीं दे रहे हैं, तो वो सोच रही है हमारा धर्म है कि हम स्त्री के विरुद्ध कुछ ना बोले। तो इस तरह से प्रभु जी कि जो धर्म होता है हर परिस्थिति में धर्म हमें कुछ धर्म का पालन करना होता है, तो हम देखते हैं कि धर्म व्यक्ति की समझ के अनुसार वो एक जो उसकी समझ होती है उस अनुसार वो कुछ पालन करता
जो है, जो धर्म है धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणोतम, जब भगवान स्वयं धर्म का उपदेश दें तो फिर इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता। जब भगवान जो है देवताओं को बताते हैं इस प्रकार की तुम मित्रता करो, तो फिर इसमें कोई मतलब संदेह नहीं। लेकिन अपने निर्णय अपना निर्णय जब कोई व्यक्ति कहता है धर्म और अधर्म का, तो उसमें फिर बहुत संदेह होता है। तो हमें फिर धर्म अधर्म का जो निर्णय है हमें शास्त्र साधु आचार्य इन तीनों की सहमति से करना चाहिए। जब तीनों की सम्मति हो जाती है एक ही दिशा में, तो फिर हमारे लिए निश्चित होता है कि हमें ये करना है। शास्त्र में भी बताया गया है, साधु भी और आचार्य भी, तीनों एक ही जो है दिशा में जब सम्मति हो तीनों की, तो फिर हमारे लिए वो निश्चित होता है कि हमें ये करना है। ठीक है,
कई बार ऐसा होता है कि दो
प्रश्न है,
दोनों धर्म जो धर्म से पालन करना है तो दो धर्म आपस में एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं कि अगर मैं ये पालन करता हूं तो ये धर्म टूटता है, ये पालन करता
हाँ, तो ये द्वंद ये जो द्वंद है तो ये अर्जुन के सामने भी था। ये द्वंद क्षत्रिय धर्म है तो वो धर्म को अर्जुन को उकसा रहा था कि युद्ध करना है, या फिर कुटुंब की प्रति जो है कुटुंब की कुटुंब का नाश, मैं अपने कुटुंब की हत्या करूंगा, तो उनको अधर्म भी दिखाई दे रहा था, तो भगवान ने निश्चित किया। और फिर भगवान कहते हैं कि विदाम बुद्धि योगम तम ये नाम प्रणाली, जो मेरे श्रवण कीर्तन में लगे रहते हैं उनको बुद्धि योग प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वो मेरे निकट आते हैं। तो भगवान है धर्म धर्म का विवेक अपने हृदय उसके हृदय से भी भक्ति हृदय से भी कभी कभी देते हैं। सामान्य विधि तो यही है कि सात साधु आचार्य के द्वारा हम निर्णय करें कि धर्म धर्म का क्या है, लेकिन जो उच्च कोटि के भक्त हैं तो उनको भगवान हृदय से भी दे देते हैं। लेकिन आप हर व्यक्ति नहीं कर सकता अपने हृदय से निर्णय करें, क्योंकि हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मदवसर ये छह शत्रु हैं। अब ये निर्णय दे रहे हैं, भगवान निर्णय दे रहे हैं, भगवान भी हैं, तो सात दोनों का निर्णय, सात दोनों की मीटिंग चल रही है। अब आवाज जो है इसमें से सात लोगों में से भगवान की है या छह शत्रुओं में से किसी की है, तो आप तो कुछ नहीं कह सकते। तो आप कहते मेरे दिल में ये आवाज आई इसलिए मैंने ये काम किया, तो वो गलत काम कर दिया। इसे सात साधु आचार्य के आधार पर आपको निर्णय करना होगा। लेकिन जो काम क्रोध ये छह शत्रु जिनके नष्ट हो चुके हैं पर भगवान ही हृदय विराजमान है, तो फिर तो उनके हृदय से भगवान जो आवाज निकलती है वो भगवान की आवाज होती है। तो ये हर व्यक्ति के लिए नहीं है कि अपने हृदय से आप निर्णय करो कि भाई क्या करना क्या नहीं करना, आप ऐसा हर व्यक्ति के लिए नहीं कह सकते।
धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी मेरे दो प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि जैसे कलयुग के अंदर आसुरिक प्रवृत्ति ज्यादा होती है, और फिर देखिए कलयुग के बाद फिर जब सतयुग आता है तो सतयुग के अंदर उन्हीं जीवों का फिर सतयुग में मतलब जन्म होता है, क्योंकि उनकी जो सूक्ष्म शरीर है उसमें तो वो तो जो आसुरिक प्रवृत्ति है तो उन्हीं का होता है, वो किसी और लोकों में जन्म लेते हैं।
कलयुग में ऐसे लोगों का जन्म होता है जो अधर्म करना चाहते हैं, पाखंड फैलाना चाहते हैं, तो उनको अवसर मिलता है, कलयुग में जन्म लेने का अवसर मिलता है। और सतयुग में उन लोगों को जन्म लेने का अवसर मिलता है जो कि धर्म के अनुसार चलना चाहते हैं। और फिर जिनको कलयुग में जन्म मिला है तो फिर उनको ऐसी संगति मिल जाती है, और ये हरे कृष्ण आंदोलन जो चल रहा है कलयुग में, तो ये स्वर्णिम युग है। 10,000 साल का जो है ये स्वर्णिम युग है, गोल्डन एज है, जिसमें आप जो है लाभ उठा सकते हैं। तो कलयुग में भी किसी व्यक्ति को अगर जन्म मिला है और वो अगर चाहता है, हृदय से चाहता है कि मुझे सही रास्ता मिले, तो भगवान तो हृदय बैठे हैं, तो आप उसी साधु से मिला देंगे। तो कोई बात नहीं है कि आपके हृदय में हमेशा भगवान विराजमान है, और आपकी इच्छा अगर होती है अपने को धोखा देने की तो भगवान धोखे रास्ते से मिला देते हैं आपको, और आपकी इच्छा होती है सच्चा रास्ता जानने की तो भगवान आपको सच्चे साधु से भी मिला देते हैं। तो भगवान तो हर समय और हर जगह और हर व्यक्ति के साथ है, तो ये बात भी जो है समझना है।
तो इसमें फिर उन जो जीवात्माएं हैं जो कलयुग में अगर जो भक्ति में नहीं लगी तो उसके बाद फिर उनका जन्म सतयुग में नहीं होगा।
सतयुग में भी असुर है, सतयुग में भी असुर होते हैं, लेकिन उनका स्थान अलग होता है। सतयुग में भी असुर होते हैं, और ये तो जो है मनुष्यों के लिए बताया गया है कि सतयुग में मनुष्यों में जो है मतलब धर्म की प्रधानता होती है, लेकिन असुरों के भी अलग स्थान होते हैं, उनके भी लोग होते हैं।
तो मतलब कलयुग के बाद जो जिनमें आसुरिक प्रवृत्ति ज्यादा है तो किसी और लोगों में जन्म लेते हैं, जिनमें आसुरिक प्रवृत्ति ज्यादा है कलयुग में, तो उनका फिर जो सतयुग में उनका जन्म किसी और लोगों में होता है।
देखो पशु पक्षियों के शरीर में भी होते हैं, पक्षियों के शरीर में होते हैं, अचेत अवस्था में भी रहते हैं। और कोई व्यक्ति नरक में अगर चला जाए तो कितने युगों तक नरक में रहेगा, कितने सतयुग और त्रेता द्वापर बीत जाएंगे ये भी कुछ पता नहीं। नरक कोई नरक में जाता है, कोई स्वर्ग में जाता है तो वहां भी कई युगों तक बीतता है, तो यहाँ के सत्युग और त्रेता ये का प्रभाव स्वर्ग में भी नहीं है।
अभी जो चतुर्युग है ये
सिर्फ और किसी का प्रश्न है क्या? तो एक व्यक्ति बार बार प्रश्न करना अन्याय हो जाएगा। देवता लोग भगवान को, देवता लोग भगवान को नहीं पहचान सकते जब तक भगवान अपनी पहचान ना कराए। तो भगवान को नमे विदुर सुरगणा प्रभुम न महर्षि, तो महर्षि लोग और देवता लोग भी मुझे नहीं जान सकते। अरे ब्रह्मा जी भी नहीं जान पाए, ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाए भगवान को, है ना? तो कौन जान सकता है? जब तक भगवान ना जानाए तब तक कौन जान सकता है भगवान?
ध्रुव महाराज जैसे भगवान के दर्शन करके पश्चाताप करते हैं कि मैंने हीरे के बदले कांच के टुकड़े मांग लिए, तो देवताओं की पहचान में और ध्रुव महाराज की पहचान में फर्क है?
नहीं, यहाँ पहचान की बात नहीं है, भगवान को तो पहचान गए, भगवान से ही मांगा, तो यहाँ पर पहचान की बात नहीं है, उन्होंने भगवान से ही मांगा। लेकिन भगवान ने जब उनको आदेश दिया कि आप जाइए अपने पिता के पास और वो तुम्हारा सम्मान करेंगे, तो ध्रुव महाराज की इच्छा नहीं थी अपने पिता के पास जाने की, लेकिन वो जो है बेमन से जा रहे थे। उनका जो है उनका मतलब उनको ये लग रहा था कि पिता ने जैसा मेरे साथ व्यवहार किया है तो उसके अनुसार मुझे पिता के पास जाना ही नहीं चाहिए। आगे चलकर भी फिर सब सामान्य हो गया, सब सामान्य स्थिति हो गई, वो ये सुन रहे थे कि मैंने गलती की, और लेकिन भगवान ने तो उनको सब कुछ सुरक्षा दे दी थी कि आप 36,000 साल राज्य करेंगे, उसके बाद मेरे धाम में आएंगे, तो कुछ मतलब ऐसा नहीं था। ध्रुव महाराज को ऐसा लग रहा था कि मेरी कुछ कमी रही, इसलिए जो है वह इस माया को पाना चाहता हूँ या धन, मेरे धन पाने की इच्छा थी, इसलिए भगवान ने मुझे यहाँ भेज दिया, वापस आ गया मैं। तो वो अपने निंदा कर रहे थे, लेकिन ऐसी कोई निंदा की बात नहीं थी, पहले की इच्छा के अनुसार भगवान ने उनको ये राज्य दिया, तो पहले उनकी इच्छा थी राज्य पाने की, तो अभी उनकी इच्छा नहीं है, लेकिन वो पहले की इच्छा के अनुसार भगवान ने दिया था, फिर उनको कुछ भी खतरा नहीं है उसमें, और वो सुरक्षित है, भगवान के चरणों की प्राप्ति करेंगे। ये सब था, ठीक है, धन्यवाद। वृद्धराज श्रीमद भागवतम की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री राधिका रमण की जय, कृष्ण बलदेव की जय।